नारायण परायणः तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे तत्प्रसंग अनुभावेन रंती देव की संगति के कारण उनके भक्ति योग के विषय में बातें करते हुए रंती देव अनुवर्तिना राजा रंती देव के अनुयायी उनके नौकर परिवार वाले और मित्र अभवन हो गए योगिनः भक्ति योगी सर्वे सभी नारायण परायणा भगवान नारायण के भक्त। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिविधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जिन लोगों ने राजा रंती देव के सिद्धांतों का पालन किया उन सबों को उनकी कृपा प्राप्त हुई और वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह वे सभी श्रेष्ठ योगी हो गए। तात्पर्य श्रेष्ठ योगी जन भक्त होते हैं जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान भगवत गीता में करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजति यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी दिव्य भक्ति में रहते हुए मेरी पूजा करता है वह योग में मुझसे भलीभांति युक्त हो जाता है और सबों में उच्च होता है। सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो निरंतर अपने हृदय में भगवान का चिंतन करता है। क्योंकि रंती देव राज्य के प्रमुख कार्यकारी और राजा थे अतएव राज्य के सारे निवासी राजा के दिव्य संसर्ग से भगवान के भक्त बन गए। शुद्ध भक्त का यह प्रभाव है। यदि एक भी शुद्ध भक्त हो तो उसकी संगति से सैकड़ों हजारों शुद्ध भक्त बन सकते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि जो वैष्णव जितने ही भक्त बनाता है उसके अनुपात में वह महान होता है। वैष्णव वाक जाल से नहीं अपितु अपने द्वारा बनाए गए भगवत भक्तों की संख्या से श्रेष्ठ बनता है। यहाँ पर रंती देवानुवर्ती नह शब्द रंती देव के अवसरों मित्रों परिजनों तथा प्रजा का सूचक है जो उनके संसर्ग से उच्च कोटि के वैष्णव बन गए। दूसरे शब्दों में यहाँ पर रंती देव के महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त होने की पुष्टि की गई है। महत्सिवाम द्वार माहु विमुक्ते मनुष्य को ऐसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए क्योंकि तब स्वतः मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने यह भी कहा है छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तर पाए छे केवा। मनुष्य को अपने प्रयत्न से मुक्ति लाभ नहीं होती किंतु यदि वह शुद्ध वैष्णव की अधीनता स्वीकार कर ले तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे नित्य विदेश शून्यवाणी पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमाता श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीमद्भागवतम स्कंध 9 अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 18 तत्प्रसंगानुभावेन दन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायणः परायणः। तो हम सब भक्तों का परम सौभाग्य है, ईश्वर प्रभुपाद जी की कृपा से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। जिस भागवत का श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है, और यही है हम सब भक्तों का वास्तविक लक्ष्य। श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार के सिद्धांत, उपदेश और तत्व का वर्णन हुआ है। विषय वस्तु के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का यह नवम स्कंध ईशानु कथा के अंतर्गत आया है। ईशानु कथा का अर्थ होता है ईशानुग्रह, माने भगवान, अनुग्रह माने कृपा। भागवत के इस नवम स्कंध में है भगवान के द्वारा पूर्ण कृपा का वर्णन हुआ है। किस प्रकार से भगवान की कृपा से हमारे इतिहास के राजा महाराजा धर्म में प्रवृत्त हुए या भक्ति में प्रवृत्त हुए या भगवान की प्राप्ति किए। ईशानुग्रह, इस संसार में कोई भी कार्य करने के लिए या किसी भी वस्तु को संपन्न करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। इच्छा सबसे मुख्य है। हम भक्तों का कार्य है, सर्वप्रथम लक्ष्य है इच्छा करना, और उसमें भी यह भक्ति जो है, यह भक्ति हमारे कर्मों से नहीं मिलती है, ये भक्ति मिलती है इच्छा से। तो इच्छा होनी चाहिए और साथ ही साथ यत्न होना चाहिए। यत्न माने मेहनत, परिश्रम। मात्र घर पर बैठे बैठे इच्छा करते रहे कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं, शुद्ध भक्त बन जाऊं। इच्छा मुख्य वस्तु है, लेकिन इच्छा के साथ साथ यत्न होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। परंतु हृदय में इच्छा भी हो जाए और हमारे द्वारा मेहनत भी हो जाए, इच्छा और यत्न के साथ साथ यदि ईश अनुग्रह न हो, भगवान का अनुग्रह न हो, तो हमारी इच्छा और मेहनत भी अपूर्ण रह जाती है। इसलिए इच्छा, यत्न और अनुग्रह, ये तीन जब एक साथ मिलते हैं तब कोई कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होता है। तो ईशानुग्रह, भगवान की कृपा के बिना हम चाहे कितनी भी इच्छा कर ले या कितनी भी मेहनत कर ले, जब तक भगवान की इच्छा न हो तब तक उस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। भागवत के नवम स्कंद में इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से सोम वंश और सूर्य वंश के राजा महाराजाओं का उद्धार हुआ। प्रस्तुत भागवत के इस नवम स्कंद के 21वें अध्याय में हम राजा रंती देव की कथा सुन रहे हैं। आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से राजा रंती देव भगवान के परम भक्त हुए और उनके अंदर बहुत बड़ा गुण था, और वह गुण था दान करने का, हृदय में दया और दूसरों को दान। मनुष्य के बहुत सारे गुण शास्त्र में बताए गए हैं, उन प्रमुख गुणों में से एक है दया और दान, क्योंकि दया जो है धर्म का मूल है। धर्म चार चरण पर खड़ा है, उनमें से एक चरण है दया। आपने श्रवण किया किस प्रकार राजा रंती देव को दया आई, 48 दिन का उपवास था। हम लोग तो एक ही दिन के उपवास में थक जाते हैं, है ना? एक दिन निर्जला करनी होती है तो रात दिन है वो पूरा दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस सोफे से उस बिस्तर पर, उस बिस्तर पर वहाँ, क्या हुआ बोले निर्जला है। कुछ लोग टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, क्या कर रहे हो बोले टाइम पास कर रहा हूँ, निर्जला है। और कुछ लोग तो मेनू बनाते हैं, कल पाव भाजी खाऊंगा, पानी पूरी खाऊंगा, क्योंकि आज निर्जला है। एक दिन का उपवास कलयुग में प्रायः असंभव है, परंतु राजा रंती देव ने 48 दिन का निर्जला उपवास किया। शास्त्र में वर्णन है उन्होंने अकेले नहीं, साथ ही साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने भी 48 दिन तक निर्जला उपवास किया। भगवान श्री रामचंद्र जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कहते हैं वाल्मीकि जी आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं रह सकूं, मुझे रहने के लिए कोई योग्य स्थान बताइए, तब वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री रामचंद्र को अनेकों स्थान का निर्देशन करते हैं। उनमें से एक स्थान ऐसा है, वे कहते हैं कि हे प्रभु इस दुनिया में जो लोग आपकी भक्ति करते हैं उनके घर पर आप मत जाइए, इस संसार में जो लोग आपकी भक्ति करते हैं और साथ ही साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भक्ति कराते हैं ऐसी गृहस्थी के घर पर आप जाइए। तो राजा रंती देव उन्हीं में से थे, अकेले भजन नहीं कर रहे थे, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भजन करा रहे थे। भागवत का श्लोक ढूंढने में मुझे देर लग जाएगी, लेकिन जहां महाराज अम्बरीश की कथा आती है, राजा अम्बरीश के विषय में बहुत कुछ आपने सुना, सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वांचांसे गुणान अनुवर्णन, ये बहुत कुछ आया, लेकिन ये सब वर्णन करने के बाद एक श्लोक में आया कि महाराज अम्बरीश बहुत बड़े वीर थे, बहुत बड़े वीर थे। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज अम्बरीश वीर क्यों थे, तो फिर दूसरे श्लोक में उत्तर देते हैं कि ये सब भक्ति करना एक बार आसान है, लेकिन महाराज अम्बरीश वीर इसलिए थे क्योंकि खुद भक्ति करते थे और अपनी पत्नी को कराते थे। तो बहुत बड़ी वीरता है। भजन करना और भजन करना भी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन भजन करा लेना अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत बड़ी चीज है। और गृहस्थियों के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि एक पति को चाहिए अपनी पत्नी को भक्त बनाए, एक पिता को चाहिए अपने पुत्र को भक्त बनाए। नहीं तो भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं, न सत्यात, वह पति पति नहीं है, वह माँ माँ नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने पत्नी को अपने पुत्र को भक्त न बना सके। तो राजा रंती देव स्वयं 48 दिन का उपवास और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी उपवास कराए, और उपवास कराए तो जबरदस्ती नहीं कराए, कैसे भी करके टेक्निक करके भक्त बना लिए और पूरा परिवार भगवान की भक्ति किए। इस प्रकार उपवास किए और धारण करने के लिए बैठे थे तो आपने सुना ब्राह्मण आए, फिर शूद्र आए, फिर कुत आया और सारा भोजन दे दिया, और फिर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, सारी कथा आपने सुनी। गत श्लोक में बुधवार के प्रवचन में हमने ये भी श्रवण किया किस प्रकार से राजा रंती देव भगवान की माया से मुक्त हो गए। राजा रंती देव के विषय में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत उनका बहुत वर्णन करते हैं, क्योंकि जब भी दानियों का लिस्ट निकलता है तो इनका नाम प्रथम होता है। साक्षात भगवान राम भी सुमंत्र जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म उस कुल में हुआ है जिस कुल में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जो अपना अपने धर्म का पालन करने के लिए खुद भूखे रह गए, यहां तक खुद मर गए, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी अपने धर्म के ऊपर अड़ग रहे। भगवान रामचंद्र स्वयं कहते हैं, शिबी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा सहु धर्म हित कोटि कलेशा, करोड़ों करोड़ों क्लेश से, करोड़ों करोड़ों दुख दर्द सहने के बाद भी इस सूर्य वंश के राजाओं ने अपने धर्म का पालन किया, अपने धर्म से अड़ग नहीं हुए। तो ये सुमंत्र जी, मेरा जन्म उस सूर्य वंश में हुआ जिस सूर्य वंश में शिबी दधीची हरिश्चंद्र रंती देव इन राजाओं का जन्म। तो भगवान भी सराहना करते हैं ऐसे राजाओं की, ऐसे दानियों की। एक आचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई, इस संसार में जो व्यक्ति जितनी दूसरों के ऊपर दया करता है ना, दया करना ये धर्म का मूल है, तो हम संसार के बद्ध जीवों के ऊपर जितनी दया करते हैं, आप किसी बॉल को हाथ में लीजिए और उस बॉल को किसी दीवार के साथ अटकिए, ठीक है, आप जितनी जोर से उस बॉल को फेंकेंगे उतनी जोर से रिवर्स आएगा। तो हम लोग जितनी जोर से, जितनी चाव से दया करते हैं, उतनी ही चाव से, उतनी ही जोर से भगवान हमको याद करते हैं, है ना। दया का उल्टा क्या होता है, याद। हम यहां से जितनी दया करते हैं वहां से भगवान उतने हमको याद करते हैं। तो संसार के जीवों के ऊपर दया करने वालों के विषय में भगवान कभी नहीं भूलते। हम जितनी जीव के ऊपर दया करेंगे भगवान याद करते हैं। इसलिए गीता में कहा ना, ये इदम परमम गुह्यम, सबसे बड़ी दया क्या है, दूसरों को कृष्ण भावना अमृत दे देना, भक्त बना देना। ऐसे व्यक्ति को भगवान सदैव याद रखते हैं, भूलते नहीं। और ऐसे दया करने वाले लोग, जिन लोगों के ऊपर दया करते हैं भगवान उनका भी उद्धार कर देते हैं। जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने नल कुबेर और मणिग्रह यमलार्जुन का उद्धार किया, वहां पर कृष्ण कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नारद अनुग्रह, नारद जी का अनुग्रह इन पर हुआ है। ऐसे तो वो ने कृष्ण की कोई सेवा नहीं की थी, न तो कृष्ण की सेवा की, न कृष्ण की भक्ति की, लेकिन कृष्ण ने सोचा कि चलो नारद का अनुग्रह है इसलिए मुझे इसका उद्धार करना होगा। इस संसार में जो भक्त दूसरों के ऊपर दया करता है, और दूसरों के ऊपर दया करके उनके ऊपर कृपा करता है तो भगवान निश्चित उनके सामने देखते हैं। तो फिर दया करने वाले के ऊपर भगवान प्रसन्न रहते हैं। आज रंती देव को दया आई है और दया के कारण ही उन्होंने दान किया, अपने भोजन का, उच्चिष्ट का, जल का, सब कुछ दान कर दिया दया होने से, और भगवान को प्रसन्न कर लिया। ये कथा हमने सुनी गत सत्र में, यह भी सुना किस प्रकार से वे माया से मुक्त हुए। कहते हैं गत लोक में आया, ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वतो अनन्य राधसह माया गुणमयी राजन स्वप्नवत् प्रत्यलीयतः। राजा रंतीदेव माया से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, और माया से मुक्त होने का कारण क्या था, क्या किया था उन्होंने? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तीन चीज उन्होंने की थी। तीन चीज करने के कारण राजा रंतीदेव माया से मुक्त हो गए। प्रथम चीज, ईश्वर अवलंबनम। पहली चीज, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके रखी थी। ठीक है, माया से मुक्त होने के लिए तीन चीज का वर्णन यहां पर आया। हम लोग भी माया में फंसे हुए हैं और ये माया हमको रात दिन तड़पाती है, सताती है। अब इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बड़े विस्तार से कहते हैं इस माया के विषय में, जो रात दिन हमको तड़पा तड़पा कर मारती है। ऐसी माया से मुक्त होने के लिए राजा रंतीदेव ने तीन कार्य किए। सबसे पहले ईश्वर अवलंबनम, भगवान की शरण ग्रहण कर ली। ये तो सीधी बात है, ये माया भगवान की शक्ति है, और यदि हम माया से मुक्त होना चाहते हैं तो ये माया जिसकी शक्ति है, जिसकी दासी है, उस भगवान के शरण में ही जाना होगा। जैसे हम उनके शरण में जाते हैं तो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। परसों प्रभु जी दृष्टांत दे रहे थे कि जैसे हम किसी के घर पर जाते हैं तो मान लो किसी के घर पर कुत्ता होता है, जैसे हम उनके घर पर जाते हैं तो कुत्ता दौड़कर हमारे पास आता है, भौंकने लगता है, हमारे पांव को सूंघने लगता है, हम डर जाते हैं। तो संतों का ऐसा मानना है, आचार्यों का ऐसा कहना है कि माया उस कुत्ते जैसी है। कुत्ता जैसे सबको काटने दौड़ता है, वैसे माया भी सबको काटने दौड़ती, सबको काटती। और जैसे हम किसी के घर पर जाते हैं, कुत्ता दौड़कर आता है, भौंकता है, चिल्लाता है, हमें परेशान कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, वैसे माया भी डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन यदि हम उस घर के मालिक को बुलाएंगे और उस मालिक को कहेंगे तुम्हारा कुत्ता परेशान कर रहा है, तो मालिक क्या करेंगे? टॉमी हटा जाओ। कितना कहेंगे टॉमी, बिल्कुल ऐसे मुंह नीचे करके धीरे करके वहां से आ जाएगा। कुत्ते के साथ हम कुछ भी व्यवहार करें, वह कुत्ता भौंकना बंद नहीं करेगा, लेकिन कुत्ते के मालिक को यदि कहेंगे इसको जरा चुप कराओ ना, तो कुत्ते का मालिक इशारा करेगा, बस इशारे से वो कुत्ता समझ जाएगा ये हमारे स्वामी का आदमी। तो ठीक उसी प्रकार माया जो है उस कुत्ते के समान है, कृष्ण उसके मालिक। जैसे वो कुत्ता हमारे सामने हमें देखकर भौंकता है, हमें काटने के लिए पीछे दौड़ता है, वैसे माया जो है भौंकती है, काटने के लिए पीछे दौड़ती। लेकिन हम इस माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तो भगवान इशारा करेंगे, माया दूर हो जाएगी, क्योंकि माया जो है भगवान से कोटि गुना दूर रहती। तो इस प्रकार माया से मुक्त होने के लिए ईश्वर अवलंबनम, पूर्व श्लोक में ये बात आई है, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा, राजा रंतीदेव ने दूसरा काम क्या किया? कहते हैं चित्तम कुर्वतः, उन्होंने अपना चित्त भगवान में पूर्ण रूप से लगा दिया। देखिए, हमें हमारे चित्त को भगवान में लगा देना चाहिए यदि माया से मुक्त होना है, क्योंकि इस चित्त को भगवान में नहीं लगाएंगे तो संसार के इस माया के प्रभाव में फंस जाएंगे। तो चित्तम कुर्वत, चित्त को लगा दिया। और तीसरा, अनन्य राधस, अनन्य का अर्थ का है न अन्य, न अन्य माने निष्काम भाव से राजा रंती देव ने अपना चित भगवान में लगाया। तीन चीज की, एक तो ईश्वर का ईश्वर की शरण ग्रहण की, दूसरा चित भगवान में लगाया, और तीसरा निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करने लगा। और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करने के कारण वे माया से मुक्त हो गए। भक्ति होनी चाहिए निष्काम भाव से। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, संसार में हम लोग भक्ति करते हैं सुखी होने के लिए। आप लोग प्रवचन क्यों सुनते हैं? यदि हम किसी को पूछे, बोले प्रवचन सुन के हमको बहुत सुख मिलता है। भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति करने से दुख चले जाते हैं और आनंद आता है। यदि भक्ति करने का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, तो वास्तव में हमारी भक्ति निष्काम भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। क्योंकि निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, हमारी इंद्रियों को सुखी करने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए, आनंद लेने के लिए यदि हम लोग भक्ति करते हैं तो उसे कामना कहा जाता है, वो काम है। पर कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, परंतु कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यदि हम प्रवचन सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसे प्रेम कहा जाता है। निष्काम भाव से, अन्य कोई भाव रखे बिना, निष्काम भाव से, किसी भी वस्तु की आशा रखे बिना हमें भक्ति करनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात स्मरण करने योग्य है कि भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से भक्ति करता है तो उसे मुक्ति तो मिल जाती है लेकिन गोलोक नहीं मिलता है, कृष्ण के माधुर्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। निष्काम भाव की भक्ति करने वाले को मात्र मुक्ति मिलती है। यहां पर भी कहा गया कि राजा रंती देव ने निष्काम भाव से भक्ति की तो उसे क्या मिला? माया से मुक्ति मिली, है ना। तो निष्काम भाव से भक्ति करने वाले को मात्र मुक्ति मिलती है। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति निष्काम भाव की भक्ति नहीं, हमारी भक्ति तो निष्काम भाव से भी श्रेष्ठ है। सकाम भाव, कुछ कामना है, लेकिन वो कौन सी कामना है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की कामना है, कृष्ण को सुखी करने की कामना है, कृष्ण को प्रसन्न करने की कामना है। जब ऐसी कामना रखकर हम भक्ति करते हैं तब जाकर कृष्ण प्रेम मिलता है और कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। तो ये तीन चीज, ईश्वर की शरण ग्रहण करना, चित लगाना और निष्काम भाव से भक्ति करने के कारण कहते हैं माया गुणमयी राजन, राजा रंती देव तीनों गुणों मयी, ये जो माया है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण वाली माया से स्वप्नवत प्रतिलीयत, ये कार्य करने से वे माया से वैसे ही मुक्त हो गए जैसे हम लोग स्वप्न से मुक्त हो जाते हैं। शिवाजी गोस्वामी कहते हैं स्वप्नवत का अर्थ है जैसे ही हमारी निद्रा उड़ जाती है, नींद खुल जाती है, तो स्वप्न को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डंडा लेकर पीछे दौड़ना नहीं पड़ता कि स्वप्न भाग जाओ। निद्रा खुलते ही तुरंत स्वप्न अपने आप भाग जाता है। वैसे ही निष्काम भाव से भगवान में चित लगाकर भगवान की शरण ग्रहण यदि हम कर लेते हैं तो हम वैसे ही माया से मुक्त हो जाते हैं जैसे स्वप्न से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात अन्य कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, भक्ति करने से माया से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। तो गत श्लोक में यह वर्णन हुआ किस प्रकार से राजा रंती देव माया से मुक्त हो गए और स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हो गए। लेकिन आज के श्लोक में ये वर्णन है कि राजा रंती देव कैसे दूसरों को भक्त बनाए, किस प्रकार से राजा रंती देव की प्रजा, राजा रंती देव का संग करने से भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली, भगवान को प्राप्त कर ली। आइए आज के श्लोक में कहा गया तत् प्रसंगानुभावेन, सर्वप्रथम तत् प्रसंग, संग का, संग शब्द तो हम प्राय इस्तेमाल करते हैं, वैष्णव साधु संग, साधु श्रद्धा तथो साधु संग, हमारे शास्त्र में साधु संग की बहुत बड़ी महिमा, साधुओं का संग करना चाहिए, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है, साधुओं के साथ प्रसंग करना चाहिए। संग और प्रसंग में थोड़ा सा अंतर। संग माने साधुओं के साथ उठना बैठना बोलना, यह है साधुओं का संग। और प्रसंग का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण संग, साधुओं की संगति करके उससे बहुत कुछ हासिल करना। आचार्य गण दृष्टांत देते हैं, जैसे एक खटमल, एक मच्छर भी साधु का संग करता है ना। हमारे राधा गिरधारी मंदिर में बहुत सारे मच्छर आते हैं और वे भी साधु संग करते हैं ना? एक मच्छर भी साधु संग करता है, लेकिन साधु की कृपा प्राप्त नहीं करता है, साधु का अपराध करता है, खून पी जाता है बेचारे, माला जपते हुए परेशान हो जाते हैं। ये मच्छर भी संग करता है, हम लोग भी संग करते हैं, लेकिन इस संग से साधुओं की कृपा मिले, उनका लाभ मिले, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब साधुओं का प्रसंग करते हैं, प्रकृष्ट रूपेण संग माने साधुओं के साथ नम्रता से पेश आना, उनके चरणों में बैठना, उनकी सेवा करना और उनके उपदेश को ग्रहण करना, जब ये चार कार्य करते हैं तब प्रसंग हो जाता है। तत् प्रसंग, तत् माने राजा रंती देव का प्रसंग करने से, संग नहीं प्रसंग, पूर्ण रूप से प्रसंग करने से उनकी प्रजा को क्या क्या प्राप्त हुआ, तो कहते हैं अभवन योगिन, वे लोग भक्त बन गए। परंतु इन्होंने किसका संग किया, राजा रंती देव का संग किया, और उस संग करते हुए उसे क्या मिला, तो कहते हैं तत् प्रसंग अनुभावेन। ये अनुभावेन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। राजा रंती देव के अनुभाव के अनुभाव का प्रसंग किया। ये अनुभाव क्या होता है, भाव शब्द तो आप लोगों ने सुना है, हृदय में भगवान के प्रति कुछ भाव उमड़ते हैं ना, भाव का अर्थ तो हम जानते हैं। अनुभाव का अर्थ होता है हृदय में रहा हुआ भाव जब हमारी क्रिया से प्रकट हो जाता है तो उस क्रिया को अनुभाव कहते हैं। समझ में आया, हृदय में रहा हुआ भाव जब क्रिया में आ जाता है तब उस क्रिया को अनुभाव कहते हैं। भागवत में निमि महाराज और नव योगेश्वर का जब प्रसंग चला, तब उस समय निमि महाराज ने प्रश्न पूछा, विचेतामेश्वरी माया, आप हमें यह बताइए कि संसार में सभी लोगों को दुखी करने वाली माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं, और अंजसा आसानी से माया से मुक्त होने का उपाय बताइए। तब उपाय बताते हुए नव योगेश्वर जी कहते हैं, तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाप्ते परे च निष्णांतम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। माया से यदि मुक्त होना है तो सर्वप्रथम गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु का संग करना चाहिए। और कैसे गुरु का संग करना चाहिए, तब इसका उत्तर देते हुए नव योगेश्वर जी कहते हैं, दो योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता शाब्दे परे च निष्णांतम। देखिए यहां पर प्रसंग लिखा है, हमें वचनों का संग करना चाहिए, प्रसंग करना चाहिए, लेकिन कैसे वैष्णव का, ऐसे गुरु, ऐसे वैष्णव जो शाब्दे परे च निष्णांतम, जो शब्द ब्रह्म में, जो शास्त्र में निष्णांत हो, जो शास्त्र को पूर्ण रूप से जानता, ऐसे लोगों का प्रसंग करना चाहिए, है ना। और दूसरी योग्यता बताई, ब्राह्मणी उपशम आश्रयम, उनका मन उनका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ होना चाहिए, उनके हृदय में भगवान के प्रति अनेकों भाव होने चाहिए। तो यह सुनकर हमारे मन में प्रश्न होता है, ठीक है हमें प्रसंग तो करना चाहिए, वरिष्ठ का प्रसंग, गुरुजन का संग प्रसंग करना चाहिए, और उनके लिए दो योग्यता कि वह शाब्दे परच निष्णांतम, शब्द ब्रह्म में, शास्त्र में प्रवर होने चाहिए। तो कोई गुरु या कोई साधु शास्त्र में कितने एक्सपर्ट हैं, कितने प्रवर हैं, वे तो जब वो बोलेंगे तब पता चल जाएगा, है ना। ये तो हम जान सकते हैं, ये तो चुन सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि ये इनको शास्त्र का इतना ज्ञान है, नॉलेज है। लेकिन उस वरिष्ठ वैष्णव या गुरु के हृदय में भगवान के प्रति क्या भाव है ये हम कैसे जान सकते हैं। अब यहां पर यह कहा गया कि ऐसे गुरु और वैष्णव का संग करो जो शास्त्र में प्रवर हो और जिनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध दिव्य भाव हो। अब शास्त्र में प्रवर कौन कितना है वह तो हम उनकी वाणी सुनकर जान सकते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या भाव है भगवान के प्रति वह तो हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन कैसे भी करके हमको जानना होगा तभी हमको प्रसंग का पूरा पूरा लाभ मिल पाएगा। तो वहां पर बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि गुरु के अंदर वरिष्ठ वैष्णव के अंदर हृदय में कैसे भाव है ये हम कैसे जाने। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरुवाष्टकम में दो तीन पद बताते हैं, इस तीन पद के द्वारा वैष्णव के हृदय में रहे हुए भाव का हमें पता चलता है। किसी भी गुरु के अंदर या वैष्णव के अंदर क्या भाव है, उनके हृदय में उनके चित्त में क्या भाव चल रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, उनकी क्रिया के द्वारा। जिनके हृदय में भगवान के प्रति भाव है उनकी क्रिया कैसी होगी। अब गुरुवाष्टकम के दूसरे श्लोक में महाप्रभु कीर तन नृत्य गीत वादिं समाध्यन मन सोर से न रोमांचकम पाशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम अनुभावेन। मैं शब्द के ऊपर बोल रहा हूं कि किसी गुरु के अंदर या वरिष्ठ वैष्णव के हृदय में भाव है, ये भाव जब प्रकट होता है तब उसे अनुभव कहा जाता है। और महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत ये करना ये किसी वैष्णव का अनुभव है, और ये करते हुए जब रोमांच होने लगे रोंगटे खड़े हो जाए तब समझ जाना चाहिए ये इनका भाव है, ये इनका भाव प्रकट हो रहा है। तो हृदय में जो भाव है वो प्रकट हो जाता है उसे अनुभाव कहते हैं, है ना। तो रोंगटे खड़े हो जाना ये है अनुभाव, अनुभावे न। और क्या है रोमांच कंप, शरीर में कंपन आ जाना ये है अनुभाव। तरंग कृष्ण भक्ति करते हुए इतना भाव उमड़ गया कि हृदय में एक तरंग आ गई ये है अनुभाव। तरंग भाज वंदे गुरु श्री चरणार। तो इस प्रकार से भाव जब क्रिया में प्रकट होता है तब उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव शब्द आया है इसलिए मैं आपको और एक चीज बता दूं, भक्त का अनुभाव और भगवान का अनुभाव, अनुभाव समझ गया ना, हृदय में रहे हुए भाव को क्रिया में लाना उस क्रिया को अनुभाव कहते हैं। तो भक्त का अनुभव और भगवान का अनुभव आज तक कोई नहीं जान पाया, इसलिए भक्त के विषय में कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। वैष्णव का अनुभव क्या है कैसा है उनकी क्रिया कोई नहीं समझ सकता, और साथ ही साथ भगवान की भी क्रिया मुद्रा को भगवान के अनुभव को भी कोई नहीं समझ सकता। अनुभव शब्द भागवत के प्रथम स्कंध के नवम अध्याय में आया है। पितामह भीष्म इसी महीने में पितामह भीष्म ने अपना प्राण त्यागा था। पितामह भीष्म उत्तरायण के दिन मकर संक्रांति के दिन कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडवों को उपदेश देते हुए कहते हैं अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्य समम शिवम। वहां पर भी यह शब्द आया अस्य अस्य कृष्णस्य अनुभावस्य। हे युधिष्ठिर हे पांडवगण ये कृष्ण के अनुभाव को नहीं कर ही चित राजन आज तक कोई नहीं जान पाया। पुमान वेद विदिष्टतम कृष्ण का क्या अनुभाव है कोई नहीं जान पाया। तो क्या इसी प्रसंग में आया है कि युधिष्ठिर महाराज जब कुरुक्षेत्र की भूमि में विजयी हो गए, जीत गए, विजयी होने के बाद ऋषि महाराज बहुत रोए, बहुत शोक किए, मैंने इतनों को मार दिया, इतने लोग विधवा हो गए, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। वशिष्ठ, नारद, धौम्य, व्यास, ये सब लोग युधिष्ठिर महाराज को समझाने लगे, बारी बारी से समझाने लगे, परंतु युधिष्ठिर महाराज नहीं माने। तो सब लोगों ने मिलकर कृष्ण को कहा, कृष्ण अब तुम ही समझाओ। अब कृष्ण भी युधिष्ठिर को समझाने लगे, महाराज आप मान जाइए, आपको कोई दोष नहीं लगा है, आपने धर्म युद्ध किया है, प्रजा के लिए युद्ध किया है। बार बार कृष्ण मनाए, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं। तब वहां पर प्रश्न उठा, कृष्ण किसी को मनाए और कोई न माने, ये बात कुछ हजम नहीं होती। श्री सुध गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, ये कृष्ण का क्या अनुभव है आज तक कोई नहीं जान पाया। अब बाहर से क्या दिखा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, मान जाइए, बाहर से युधिष्ठिर महाराज को मना रहे हैं और अंदर से परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर को कह रहे हैं मानना मत है। बाहर से खुद भगवान के रूप में मना रहे, मान जाओ मान जाओ, पर अंदर से परमात्मा के रूप में कहते मानना मत। ये नहीं मैं आपको चौंकाने देने वाली बात करूं, महाभारत में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण खुद संधिदूत बनकर दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन के सामने क्या प्रस्ताव रखते हैं, दुर्योधन अब मैं संधिदूत, खुद संधिदूत बनकर आया, बाहर से क्या संधि कराने के लिए आया, दुर्योधन में संधि कराने के लिए मैं दूध बनकर आया हूँ, तुम एक काम करो, 5 गांव पांडवों को दे दो, बाकी पूरी दुनिया तुम रखो और राज करो। तो दुर्योधन ने कहा, सोई की नोक रखने की बराबर भूमि भी मैं आपको नहीं दूंगा, यदि चाहिए तो युद्ध करके ले ले। सीधा सीधा महाभारत में वर्णन आया है, भक्तों श्लोक में लिखा है, कृष्ण ने कहा तुम क्यों नहीं मान रहे हो, तुम इतनी सुंदर बात, अब आप विचार कीजिए, दुर्योधन को इतनी बुद्धि नहीं होगी, यदि दुनिया में किसी भी पागल से पागल आदमी को भी ये प्रस्ताव दिया जाए कि 5 गांव तुम उनको दे दो और पूरी दुनिया तुम रखो, तो ठुकराएगा इस बात को, दुर्योधन इतना पागल था, नहीं तो दुर्योधन पागल था, न क्रोधी था, न माया मिसा था, कुछ नहीं था। आज का कितना भी बड़ा शत्रु, कितना भी बड़ा दुश्मन को भी ये कहा जाए कि तुम्हारे दुश्मन को 5 गांव दे दो और पूरी दुनिया तुम रख लो, तो कोई ठुकराएगा इस बात को, कोई नहीं ठुकराएगा। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को ठुकराया। कृष्ण ने ही पूछा, कृष्ण दुर्योधन तुम इतने अच्छे प्रस्ताव को क्यों ठुकरा रहे हो। तब दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम अधर्म प्रविष्टम, महाभारत का यह श्लोक है, कृष्ण मैं जानता हूं कि ये 5 गांव दे देना और पूरी दुनिया पर राज करना यही धर्म है और यही करना चाहिए। जानामि धर्म, मैं धर्म जानता हूं, लेकिन क्या बताऊं, मेरे अंदर कोई बैठा है, मैं जानता हूं मेरी इच्छा है दुनिया के ऊपर राज करने की, लेकिन मेरे अंदर कोई बैठा है जो मुझे धर्म में नहीं अधर्म में प्रविष्ट करा रहा है। जानामि धर्म अधर्म प्रविष्टम, मैं धर्म जानता हूं, ज्ञान है, सब कुछ है, मेरी इच्छा भी है कि वो सालों को 5 गांव दे दूं और पूरी दुनिया पर राज करूं, लेकिन क्या करूं, मेरे अंदर कोई बैठा है जो मुझे धर्म करने नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार अब देखिए कृष्ण की लीला को, बाहर से संधिदूत बन के आए हैं और अंदर से दुर्योधन को कह रहे नहीं नहीं इसको ठुकरा दे और युद्ध कर ले। हालांकि कृष्ण कहती है इच्छा थी कि युद्ध हो और इस ये धर्म युद्ध में सारे अधर्मी राजाओं का विनाश हो जाए। कहने का भाव यह है, अनुभावेन तत् प्रसंग, अनुभावेन तत् माने रंतिदेव, राजा रंतिदेव का उनकी प्रजाओं ने संग किया, प्रसंग किया, और राजा रंतिदेव के किस बात का प्रसंग किया, बोले उनके अनुभव का संग किया, उनका का संकी। तो अनुभावेन शब्द से हमने ये जाना कि भगवान और भक्त के अनुभव को कोई नहीं जान सकता, फिर भी उनकी प्रजा ने राजा रंतिदेव का संग किया। संग का अर्थ आचार्यों ने लिखा है, श्री प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि राजा रंती देव के मुख से बहुत उपदेश सुना, बहुत कथाएं सुनी, बहुत प्रवचन सुना, और जब बहुत बहुत ये सुना तो अभवन योगी न सर्वे, राजा रंती देव के भक्त रंती देव के अनुशासन में अंडर में रहने के कारण अभवन उनकी जो प्रजा थी सब लोग हो गई, क्या हो गई, योगी न, सारी प्रजा सर्वे, सर्वे शब्द माने सारी प्रजा योगी न अभवन, योगी बन गई। योगी माने श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त योगी। ऐसे संसार में बहुत योगी होते हैं, प्रभुपाद जी कोटेशन करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, बहुत योगी होते हैं। लेकिन छठे अध्याय के अंत में गीता में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा, प्रभु योगी तो बहुत सारे हैं, आपको कौन सा योगी अच्छा लगता है? वो रोज सुबह गार्डन में कपाल भाती भक्ति का अनुलोम विलोम करते हैं, वो योगी अच्छा लगता है कि फिर ज्ञान योगी अच्छा लगता है कि ध्यान योगी अच्छा लगता है? आपकी दृष्टि से कौन सा अच्छा है? क्योंकि आपने तो कंफ्यूज कर दिया, ये पूरे अध्याय में योगियों का वर्णन करते हुए, अष्टांग योग का वर्णन करते हुए, आपको कौन सा योगी पसंद है? तब कृष्ण अंत में कहते हैं, अर्जुन योगी नाम अपि सर्वेषां, दुनिया में जितने भी योगी हैं उन सभी योगियों में से मत गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, जो अपनी अंतर आत्मा से मेरी श्रद्धा से भक्ति करता है उसका भक्ति योगी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहां पर क्या कहा गया, रंती देवानुवर्तिन, देखिए बहुत सुंदर शब्द है, राजा रंती देव, यहां पर राजा नहीं, यहां भक्त रंती देव लगाया जाएगा, भक्त रंती देव के अनुवर्तिन अर्थात अंडर में रहने से, अनुशासन में रहने से, भक्त रंती देव के अनुशासन में रहने से अभवन योगिन सर्वे, सब लोग भक्त बन गए। इसका अर्थ है भक्ति जो है अनुवर्तिन, किसी के अंडर में रहकर ही करनी चाहिए, भक्ति कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, समय हो गया है, परंतु अनुवर्तिन भक्त रंती देव के अंडर में रहकर सर्वे योगिन, सब लोग भक्ति योगी हो गए। और कैसे भक्ति योगी हो गए, कहते नारायण परायणा, साधारण भक्त नहीं बने, भक्त रंती देव के अंडर में रहकर ऐसे भक्त बन गए, ऐसे भक्त बन गए कि नारायण परायण, कि अब नारायण के बिना वो लोग जी ही नहीं सकते थे। नारायण का अर्थ होता है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो नरों के अंदर अयन करते हैं, नर माने मनुष्य, मनुष्य के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं, या नर का एक अर्थ होता है जल, हम बोलते हैं नीर, नर का एक होता है जल, और अयन माने सोना, जो जल में सोते हैं, शिरोदक्षाई गर्भदक्षाई, नारायण माने विष्णु कृष्ण, और परायण माने विष्णुमय हो जाना, उनके बिना रह नहीं पाना। तो भक्त रंती देव के अनुवर्ती न, उनके अंडर में रहने से ऐसी ऐसी भक्ति प्राप्त हुई कि अब वो नारायण के बिना नहीं रह सकते। और इसका दूसरा अर्थ है कि भक्त रंती देव के अंडर में रहने से सब लोग ऐसे भक्त बन गए, ऐसे भक्त बन गए हैं कि उसी जन्म में और जीते जी उनको नारायण की प्राप्ति हो गई। तो इस श्लोक से बहुत सुंदर सिद्धांत प्रकट हुआ कि हमें यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो भक्ति मात्र भगवान का भक्त ही दे सकता है। ये प्रथम सिद्धांत, अनुवर्तिन रंती देवानुवर्तिन, भगवान से बहुत कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति यदि हमें चाहिए तो भगवान के भक्तों को अनुवर्तिन बनना होगा, ये प्रथम बात। और दूसरी बात, यदि हम किसी भगवान के भक्त के अंडर में हैं तो उस भगवान के भक्त का उद्धार हो या न हो, लेकिन भक्त के अनुशासन में भक्ति करने वाले का तो निश्चित उद्धार हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें अनेकों शास्त्र के प्रमाण आप देखिए, नारद जी का स्वयं प्रमाण, वे खुद उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे, ब्राह्मणों की सेवा करने से नारद मुनि का शरीर प्राप्त हो गया, भगवान मिल गए। गजेंद्र प्रसंग में आप राह को देखिए, भक्ति किया गजेंद्र ने, साधना सब कुछ मेहनत किया गजेंद्र ने, भगवान आए तो पहले ग्राह का उद्धार किया फिर गजेंद्र का उद्धार किया। क्यों? सारी मेहनत साधना भक्ति भजन भगवान को बुलाना ये सारा काम गजेंद्र ने किया था, लेकिन गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि ग्राह ने गजेंद्र के चरण को अनुवर्ती न, ग्राह ने गजेंद्र के चरण को पकड़ के रखा। तो हम किसी के अनुग्रह में रहते हैं, किसी के अंडर में रहते हैं, निश्चित हमारा पहले उद्धार हो जाता है। और शबरी को भी देख लीजिए, शबरी मातंग ऋषि की सेवा करती थी, मातंग ऋषि ने कह दिया कि मुझे तो भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम किसी के अंडर में रहकर भक्ति की हो, तुमने महात्मा की सेवा की है, इसलिए भगवान स्वयं तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। प्रभुपाद जी भगवान ऋषभ देव का वो उपदेश कोट करते हैं, भगवान ऋषभ देव कहते हैं, नायम देहो देह भाजा निर्लोके, ये मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। तब उनके पुत्रों ने कहा, तो पिताजी बताइए भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं, महत सेवा द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिता संगी संगम महान तनस्य समचिता प्रशांता सुमन्य हो सुहद साधु हो। यदि भक्ति चाहिए, सीधा प्रश्न था कि भक्ति कैसे मिलेगी, सीधा उत्तर दिया, महत सेवा द्वार माहु विमुक्त, महात्माओं की सेवा करने से ही भक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। यहाँ पर रंती देव की अनुवर्ती ने, रंती देव की सेवा करने के कारण उनकी प्रजा भक्ति मिली और फिर भगवान मिल गए। तो हमें भी वैष्णवों की, वरिष्ठ भक्तों की, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें भक्ति मिलेगी और साक्षात नारायण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप सबका धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निदाय गौर प्रेमानंदे।